జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ, జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరదారీ, జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరదారీ. జయ యశోదానందన వ్రజ జన రంజన, యశోదానందన వ్రజ జన రంజన, యమునా తీరావనచారీ, యమునా తీరావనచారీ, జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ, జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ, జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరదారీ, జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరదారీ, జయ యశోదానందన వ్రజ జన రంజన, యమునా తీరావనచారీ, జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ, హరే కృష్ణ 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 హరి హరి, హరే రామ హరి రామ 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 హరి హరి, హరి కృష్ణ 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 హరి హరి, హరి రామ హరి రామ 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 హరి హరి, హరి కృష్ణ 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 హరి హరి, హరి రామ 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 హరి హరి, जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा नीताय गौर हरि बोल हरि बोल नीताय गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परी व्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमाती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परी व्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमाती डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की श्री श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय गुरु शिष्य परंपरा की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्री वासदि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की मायापुर नवदीप धाम की श्री क्षेत्र पंडरपुर धाम की गंगा मैया जमुना मैया की तुलसी देवी भक्ति देवी की दोलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन की विदाई गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णायेषु नवद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः आज हम भगवद गीता के छठे अध्याय से इसका शीर्षक है ध्यान योग इसमें पांचवा श्लोक पर चर्चा करेंगे उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैवयात्मनो बन्धुः आत्मैवरुपुरात्मनः उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैवयात्मनो बन्धुः आत्मैवरिपुरात्मनः उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैवयात्मनो बन्धुः आत्मैवरिपुरात्मनः उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैव आत्मयो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः उद्धरेदात्मनात्मानम् माताजी आत्मनात्मानं और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। तात्पर्य, प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, क्योंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन का रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क बड़क से आकृष्ट न हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। अपने को विरक्त करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है और अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में कहा भी गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषय असंगो मुक्तय निर्विषयम मनः। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं दासि स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलम श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। उद्धरेद आत्मनात्मानं न आत्मानं अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जो कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हैं। जो मनुष्य है, भगवद गीता किस लिए कही गई है? मनुष्यों के लिए। मतलब जो मनुष्य नहीं है वो भगवद गीता नहीं पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं वे मनुष्य है। जो भगवद गीता जो अपने जीवन में पालन करना चाहते हैं वो मनुष्य है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मन जो है, इसको मन की सहायता से हमें उद्धार करना चाहिए, क्योंकि बद्धावस्था में यही मन जो है हमारा शत्रु है। और जब हम मुक्त हो जाते हैं या बनने का प्रयास करते हैं तो यही मन हमारा सबसे अच्छा मित्र भी बन सकता है। लेकिन दुर्दैववश इस मन को हमने शत्रु बना के रखा है और ये भी पता नहीं चलता है कि ये हमारा शत्रु है, तो हम उसको मित्र के स्वरूप में हम जो भी कहता है उसको स्वीकार करते हैं। हालांकि भौतिक जगत की सब शिक्षाएं क्या है, जैसा आपके मन में आता है वैसा करो, लेकिन भगवत गीता ऐसा नहीं कहती है कि जैसा आपको मन में आता है वैसा करो, क्योंकि मन को पहले समझना चाहिए ये कि पहले हमारा शत्रु है या मित्र है, वही चीज है। तो इसलिए शास्त्र में, खास करके योग पद्धति में, मन को बहुत महत्व दिया गया है। इस मन को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इसी भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण मन के बारे में कहते हैं कि कहाँ है मन। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियोभ्या परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिर्यो परसस्तु सत्व। मन बीच में आता है। तो इसलिए इस मन को जब हम बाहर की तरफ सब दिखाते हैं तो मन बाहर की तरफ सोचता है, और मन को जब हम अंदर की तरफ दिखाते हैं तो मन अंदर के बारे में सोचता है। तो समस्या क्या है? हमें अंदर के बारे में कुछ मालूम नहीं है और बाहर जो दिखता है उसको ही हम सही मानते हैं। तो अंदर क्या है कैसे पता चलेगा? मतलब जो हमारे दृष्टि से परे है वो कैसे हम पता करेंगे या उसके बारे में कैसे हम समझेंगे? जिसके ऊपर मन को आकर्षित करना है तब तक ये मन बाहर का आकर्षण जो है वो छोड़ नहीं पाएगा। तो इसलिए अंदर का आकर्षण निर्माण करने के लिए हमें शास्त्र का आधार लेते हैं। शास्त्र क्या है? कि जो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, मन से समझ नहीं सकते, बुद्धि से उसका पार नहीं लगा सकते, मतलब बुद्धि से भी उसको समझ नहीं सकते, ऐसी चीजों को हमें स्वयं भगवान बता रहे हैं कि क्या है अंदर। तो जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है वो अंदर देखता है, वो बाहर नहीं देखता है। और बाहर जो देखता है वो सही प्रकार से अंदर नहीं देख पाता है।
तो इसलिए ये पूरा भौतिक शिक्षा जो है ये हमें कैसे बाहर की तरफ दिखना सिखाती है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान है हमें अंदर कैसे देखना है इसको सिखाती है। तो ये मन बीच में है, तो अभी 2-3 महीने पहले हम अयोध्या गए थे, तो वहां पर हम चर्चा कर रहे थे रामायण के बारे में, और उसमें इस संदर्भ के बारे में हमें शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार से मन की नहीं सुनना चाहिए। तो रामायण से बहुत से शिक्षा ले सकते हैं, ये अपना इतिहास भी है, तो उसी के साथ साथ अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए हमें इस शास्त्र की सहायता होती है। तो हर व्यक्ति रामायण में हमें कुछ सिखाता है। तो रामायण में हम सब जानते हैं कि किस प्रकार दशरथ जब वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, और उन्होंने क्या देखा, ये रामायण में नहीं लिखा है लेकिन कथा में कहा जाता है। वो एक दिन आईने के सामने गए और अपने कान के ऊपर एक सफेद बाल उनको दिखा दिया। तो सफेद बाल का मतलब क्या है, उसको कलर करना चाहिए। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान जिसको है वो समझते हैं सफेद, जैसे शंकर पंडित प्रभु कल पुरंजन की कथा में कह रहे थे कि कैसे बीमारी जो है, ये अनेक सैनिक है यमदूत के, तो आक्रमण करते हैं, तो ये एक आक्रमण है। बाल सफेद होना ये आरोग्यदायी जीवन का लक्षण नहीं है, बाल सफेद होना ये बीमारी है। हम उसको बाहर कलर लगा के छोड़ देते हैं, तो उसको एक ही उपाय है, साफ करना। तो मतलब है अपना सर साफ रखना। तो दशरथ ने क्या सोचा कि अभी समय आ गया है। किसका समय आ गया है, पूरा हम वृद्ध हो रहे हैं, शुरुआत हो गई है, तो उसे क्या करना चाहिए, तो राज्य से मुक्त होना चाहिए। तो तुरंत वो विचार नहीं करते हैं, वशिष्ठ मुनि को बुलाते हैं, बताते हैं अपनी राय को, और कहते हैं कि अभी मैं राज्य का त्याग कर दूंगा। इसलिए रामचंद्र का राज्याभिषेक होना चाहिए, क्योंकि ये निर्णय लेना बहुत मुश्किल है कि सब भौतिक प्रकृति से, आसक्ति से मुक्त होना, वो भी एक दिन में। सोचिए, एक दिन में, एक रात में पूरा उनका जीवन बदल गया। हमारा 50 वर्ष हो गए भी बदलता नहीं है। तो क्यों है कि बचपन से भक्ति का ट्रेनिंग है, बचपन से आध्यात्मिक जीवन के महत्व का उनको पता है, इसलिए सही समय पे सही निर्णय ले सकते हैं। हमें जीवन में अनेक निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है 50 वर्ष के समय हम लेते हैं, जब बाल सफेद दिखते हैं। अभी तो बाल 15 वर्ष में ही सफेद होते हैं, हाँ, कलयुग के प्रभाव से। तो अच्छा है, समझ सकते कि हम बूढ़े बन गए, क्योंकि आजकल मृत्यु 50 वर्ष के बाद, 60 वर्ष के बाद नहीं आता है, कभी भी आ सकता है। तो सबको ये वार्निंग है, क्योंकि भगवान हमें सतर्क करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य बोलते हैं शरण आ जाओ, लेकिन प्रकृति के माध्यम से भी हमें सतर्क करते हैं। हम जिसको अपना मानकर बैठे हैं इस शरीर को, उसके माध्यम से हमें सतर्क करते हैं कि अभी तैयार हो जाओ, समय आ रहा है। ऐसा तुरंत मृत्यु को भेज नहीं देते भगवान, कभी सतर्क करते हैं। तो पहला लक्षण है बाल, बाद में कान, बाद में आंखें, बाद में नाक, और बाद में मुंह, देखो कैसा है, और बाद में पूरा शरीर। ये कैसे होता है? पूरी प्रकार से वो सशक्त नहीं रहता है, वो अनेक प्रकार से उसको व्याधि आती रहती है। तो इसलिए दशरथ महाराज ने रामचंद्र को बुलाया और कहा कि कल ही हम आपका राज्याभिषेक करने जा रहे हैं। तो राम को तो अयोध्या में सब लोग चाहते भी थे और पूरी अयोध्या में आनंद हो गया, सब उत्सव होने लगा। रात का समय था, फिर भी तुरंत दूसरे दिन ही राज्याभिषेक है, इसलिए सब तैयारियां शुरू हो गई, पूरी अयोध्या में आनंद हो गया। लेकिन एक व्यक्ति को आनंद नहीं हुआ, वो तो कौन थी? मंत्रा। अब ये मंत्रा खाली अयोध्या में थी, ये रामायण में थी, ये हमारे पास भी है, यही मंत्रा हमारे पास भी है, लेकिन हम दुर्दैववश उसका ही सुनते रहते हैं। कई कई ने केवल एक बार सुना और उसको बाद में पता चला गलती की है, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता है कि हम गलती कर रहे हैं, उसको सुनते ही जा रहे हैं। तो मंत्रा वो कैकेयी के पास गई। मंत्रा ने पहले राजमहल के ऊपर जाके देखा, पूरे अयोध्या में तैयारी हो रही है, सब जगह उत्सव मना रहा है जा रहा है, क्या है विशेष? ऐसे तो कैलेंडर पे कोई तिथि नहीं है कि जहां पर उत्सव होता है, तो ये बीच में क्या है? तो उन्होंने दूसरे एक दासी को पूछा है कि ये क्या चल रहा है अयोध्या में, आपको पता नहीं? राम का कल राज्याभिषेक होने वाला है। तो सब लोग आनंदी है, लेकिन मंत्रा को आनंद नहीं हुआ। वो तुरंत भागते भागते आ गई कैके के महल में और कैके बोला, ये मूर्ख स्त्री है, आप ऐसी कैसे आनंद में रहती हो? आपको पता नहीं है कल राम का राज्याभिषेक हो रहा है? तो कैके का मन साफ था, भावना भी साफ थी, तो कहा कि ये तो आनंद की बात है, राम यही एक योग्य व्यक्ति है जो दशरथ के बाद राज्य करने लायक है। तो कहते कि आप मूर्ख हो, आपको समझ में नहीं आता है, अगर राम राजा बन गए तो कभी सोचा है आपके भरत का क्या होगा? कभी सोचा है आपका क्या होगा? मैं आपकी दासी हूं, आपके सुख में ही मेरा सुख है, और मैं ये देखना चाहती हूं कि भरत को राजा बनना चाहिए और आपको राजमाता बनना चाहिए। अगर राम राजा बन गए तो भरत को दास बनाएंगे और आप दासी बन जाओगे। तो ऐसा जब कैकेयी को कहा, पहले तो उपहार दिया था उसको अपने, जब शुभवार्ता लेके आई मंत्रा ने, मंत्रा को अपने गले में से सबसे अच्छा हार निकाल कर उसको भेंट दिया। मंत्रा ने उसको फेंक दिया, देखिए आप कैसे आनंद मनाती हो। तो इतना एक क्षण में परिवर्तन हो गया, तो यह कैसे हो गया? ये मंत्रा ने उसके मन में विष डाल दिया। तो देखिए संघ का कितना महत्व है, जिसके साथ हमें रहना है। तो मंत्रा ने क्या सिखाया, अगर राम राजा बन गया तो आपको उसकी सेवा करनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार ये मंत्रा, ये मन है, मराठी में उसको मंथरा का मतलब है थारा, जिसको थारा नहीं है इसको मंथरा बोलते हैं, मतलब एक ठिकान पे नहीं रहती है मन, थारा उसका कायम जो है वो बदलते रहती है। तो इस मंत्रा का सुनने के बाद कैकेयी का मन जो है पूरा बिगड़ गया। तो इसलिए ये मंथरा है, तो इससे बहुत भक्त को सतर्क रहना है। कैसे सतर्क रहना है? दिन में एक बार नहीं, हर क्षण को सतर्क रहना है। जैसे कल सुबह जब हम मंत्र के बारे में या गुरुजन प्रभु के किताब से प्रभु जी पढ़ रहे थे, बता रहे थे कि इसे मन जो है इसको आध्यात्मिक दृष्टि से जो बहुत ऊंचे स्तर पे गया है, ऐसा व्यक्ति भी उस मन को जैसे एक आप जंगल से कोई पशु लाए हैं तो हिंस्त्र है, तो उसको ऊपर आप क्या हो गया है, वो काबू हो गया है, तो ऐसा उसको छोड़ नहीं देते आप कि चलो अभी ये क्या है, जंगल से हम किसको शेर को लाया और ये अभी मेरा सब कुछ सुन रहा है, ये ऐसे वो कभी भी नहीं सोचता है, उसके ऊपर ध्यान रखता है, क्योंकि वो कभी भी अपने मूल स्तर पर जा सकता है। ऐसे हम बहुत से खबर पढ़ते हैं अखबारों में कि सर्कस में जो रिंग मास्टर था उसको ही क्या हो गया, शेर ने खा लिया, तो रिंग मास्टर क्या सोचता है, वो मेरा सुनता है कितनी बार सुनता है, एक बार बस जंप मार देता है। तो इसको मन को इसी प्रकार हमें हर क्षण इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, हर क्षण। ऐसा नहीं है कि कभी तो बीच में एक बार टेस्ट करेंगे चलो मन कैसा है, नहीं, हर क्षण में ध्यान रखना चाहिए। तो इस मंत्रा के उदाहरण से हम देखते हैं यही मन मंत्रा के स्वरूप में हमारे पास है, तो भी इस मंत्रा को कैसे दूर रख सकते हैं हम, केवल एक ही तरीका है, इट साउंड्स द सेम, उसका भी उच्चार वैसा ही होता है, मंत्र, मंत्र से, मंत्र से इस मंत्रा को दूर रख सकते हैं। तो मंत्र क्या करता है, मंत्रा को चुप बिठाता है कि तुम चुप बैठो, मेरा सुनो, क्योंकि मंत्र का मतलब क्या है, मन को मुक्त, मनस्त्रायते इति मंत्र, मन को मुक्त करता है। तो इसलिए इस मंत्र को जो ध्यान पूर्वक जप करता है तो मंत्रा ज्यादा तकलीफ देती है, अनुभव है किसको, नहीं, सब लोग तो महात्मा है। जब भी आप जप करने के लिए बैठो तो मंत्रा का जॉब शुरू हो जाता है, और समय ऐसा लगता है हमें मंत्रा तकलीफ नहीं देती है, लेकिन क्या होता है, हम उसके अधीन है तो कुछ पता नहीं चलता है। तो जप के समय हम क्या प्रयास कर रहे हैं, मंत्रा की चंगुल से बचने का प्रयास कर रहे हैं। तो दिन में हमें जो नहीं याद आएगा, जो 50 बरस पहले हुआ है, वो जपा के समय याद आता है, याद करने का प्रयास करो तो नहीं याद आएगा, लेकिन सब पूरा जपा के समय पूरा जो है ना सब कुछ याद आता है। तो ये मंत्रा है, ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, इससे मुक्त होना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी इस मंत्र को अगर हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे बहुत टाइम लगेगा इसको, ऐसा नहीं है कि आज जपा शुरू कर दिया और कल मंत्रा जो है आएगी हमारे सामने दंडोत करके, प्रभु जी क्या करूं, कैसे मैं आपकी सेवा करूं, ये इतना आसान नहीं है। तो इस मंत्रा को दूर रखना, इसमें मंत्र की सहायता से हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। तो कई कई ने मंत्रा का सुना और वो सोचने लगी कि ये कैसा होगा, अभी तो क्या हो गया है, अनाउंस हो गया है, सबको पता चल गया है, तो ये कैसे हो सकता है। तो कई कई मंत्रा को पूछती है कि ये कैसे संभव है। तो मन का दूसरा काम क्या है, कैसे संभव है बताना, कि कैसे आप कृष्ण से दूर रह सकती हो, कैसे आप राम से दूर रह सकते हो। तो बताती है कि आपको याद है जब देवताओं का और असुरों का संघर्ष हुआ था तो आपने दशरथ राजा की मदद की थी और उस समय उन्होंने आपको दो बेनेडिक्शन दिए, वर दिए हैं, वर ही बोलते हैं हिंदी में, वरदान दिए हैं दो, तो बाद में कहीं को याद आता है, हाँ बराबर है दो याद, तो उसको उपयोग करना यही समय है। तो मन हमें केवल जाप नहीं करना ये नहीं बताता है, तो क्या करना ये भी बताता है। तो अभी जीवन में बहुत कुछ महत्वपूर्ण है, आपको पता चल गया मृत्यु के समय जप करना है, तो अभी टाइम नहीं आया है, हाँ मृत्यु के समय जप करो, तब तक आप जो भी करना है करो। तो इसलिए देखो हमारा जप अगर सुबह नहीं हो गया तो रात को 12 बजे तक नहीं होता है, अनुभव है किसी को? या तो सब सुबह जप करने वाला ही है ना, हरे कृष्णा। तो जैसे हम उसको थोड़ा थोड़ा दूर करेंगे तो मंत्रा स्ट्रांग हो जाती है। जब भी भीड़ बैग लेके जपा करने का प्रयास करो, अरे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ऐसा करके रात को 12 बज जाते हैं और नींद कहती है कि अभी मेरा समय है, तो आज का जपा क्या हो गया, हरे कृष्णा हो गया। तो ये मंत्रा हर स्टेप पे, हर एक एक क्षण पर भगवान से दूर कैसा रहना है सिखाती है। जैसे कई कई को सिखाया कि कैसे राम से दूर रहना है, तो हर एक समय भी, खास करके मैं गृहस्थ हूं तो बता सकता हूं कि कितने कारण है जीवन में जो कि हम इसे प्रथम स्थान देना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं लगता है, समझ गया बाद में, दीक्षा होने के बाद तो क्या होता है, इतना आनंद होता है कि अभी हम मुक्त हो गए। दीक्षा लेने तक हम इतने सीरियस रहते हैं, दीक्षा लेने के बाद ऐसा लगता है कि भगवत प्राप्ति हो गई, गुरु की प्राप्ति हो गई, भगवत प्राप्ति कर देंगे अगर हम गुरु का सुनेंगे तो। कोई कोई लोगों तो इतना आनंद होता है मुझे भगवत प्राप्ति हो गई, अभी क्या है, अभी मैं कभी भी जप कर सकता हूं दिन भर मुझे मालूम है। तो ये मन मंत्रा अनेक कारण बताएंगे आपको जप नहीं करने का। आप करने के लिए भीड़ बिहार माला लेके बैठोगे फिर भी कुछ तो व्हाट्सअप आ जाएगा कि देखिए ये महत्वपूर्ण है। आजकल मंत्रा कितनी जगह पे है, सब जगह। तो ये आपको क्या, उसका क्या काम है, भगवान से दूर रखने का। तो एक ही काम कैसे करते है, कैसे दूर रखने का, तो सब लिस्ट है, हजारों कारण है, हजारों कारण है भगवान से दूर रहने के लिए। तो इसको हमें बहुत सतर्क रहना है। तो कई कई को ये भी बताया कि ये दो वरदान आपको प्राप्त हुए थे, उस वरदान का उपयोग करो। वो कैसे करो वो भी बताया, राम को वनवास भेज देना है, कितने वर्ष तक, 14 वर्ष तक, और भरत राजा, भरत को राज्यपद राजा बनाना है। तो अभी कई कई सोच रही है कैसे करना, तो लेकिन आपको इसके लिए गुस्सा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको आनंद में ये सब कह सकते हो आप। तो उसको बोला कि आप जाके, पहले जमाने में जब स्त्रियों को क्रोध आता था उनके लिए अलग जगह थी क्रोध प्रकट करने के लिए, आज जैसे बच्चों के सामने वो क्रोध प्रकट नहीं करते थे। आजकल क्या है, पत्नी जो है पति के ऊपर क्रोध प्रकट करती है, क्योंकि एक ही बेडरूम का घर है, क्या करेंगे। तो उसके लिए महल में एक जगह थी क्रोधागार, मतलब वहां पर आप बैठे हो तो समझ लेना कि आपको गुस्सा आ गया है, ऐसे क्रोधागार। हाँ, तो बहुत बड़ा महल था, तो क्रोधागार में जाके आप बैठो और गुस्सा आ गया है तो ये प्रकट भी करना चाहिए। उसके बाहर कोई लक्षण होते हैं, आपके बाल बिखर जाते हैं, कपड़े जो है थोड़े गुस्से से अलग हो जाते हैं, ये सब जाके आप बैठो। तो दशरथ महाराज सब ये तैयारी को देख रहे हैं और अंत में दिखाई देता है, कई कई कहाँ नहीं दिख रही है, कौशल्या सब उत्सव की तैयारी कर रहे हैं, सुमित्रा भी तैयारी कर रहे हैं, सुमंत भी है, सब लोग जो है अयोध्या के सब लोग तैयारी कर रहे हैं, ये कई कई नहीं दिख रही है। तो समझ गए अगर कई कई नहीं दिख रही है तो उसके महल में होगी, तो महल में आ गए तो उधर भी नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो अभी एक ही जगह बच गई क्रोधागार, तो वहां आके देखा तो कई कई गुस्से में बैठी थी। तो बहुत बड़े डायलॉग्स है, थोड़ा फॉरवर्ड करेंगे हम। तो कई कई दशरथ से कहती है कि आपने राम को राजसिंहासन बैठाने का निर्णय किया है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए। तो दशरथ को ठीक है, हाँ दशरथ का राजा भरत का राज्याभिषेक करना चाहिए, तो उतना उनको बुरा नहीं लगा। लेकिन दूसरा क्या है, लेकिन इस समय 14 वर्ष के लिए राम को वनवास भेजना चाहिए। तो दशरथ महाराज ने बताया कि ठीक है, मैं भरत को आपकी इच्छा है इसलिए मैं कर दूंगा राजा, लेकिन 14 वर्ष राम को मैंने उसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। और मूर्छित हो गए, बोलते तू मूर्ख है, तो ऐसा कैसा विचार कर सकती है। तो दशरथ मूर्छित हो गए। बाद में कैकेयी ने सोचा कि ये ऐसा होने वाला नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप मेरा नहीं सुनोगे तो मैं विष प्राशन करूंगी और मेरा देह त्याग करूंगी और इसका जो कलंक है आपके ऊपर जाएगा। तो दशरथ की इच्छा के विरुद्ध केवल कैकेयी को संतुष्ट करने के लिए दशरथ को क्या करना पड़ा, राम को बुलाया। इस राम को बोला था कि आप तैयारी करो, वो तैयारी करने के लिए गए थे, तो सुमंत को भेजा, मंत्री को, बोले जा आप राम को लेके आ जाओ। उस समय वो सीता के साथ अपने महल में थे। तो राम को सेवक आके बताया कि आप तुरंत, दशरथ महाराज की आज्ञा है, आप तुरंत महल में आइए। तो उन्होंने कहा कि सीता को कुछ तो आवश्यक होगा, कल के राज्याभिषेक के लिए कोई तो तैयारी होनी होगी, मेरी आवश्यकता होगी, इसलिए बुलाया होगा। तो रामचंद्र आ गए, दशरथ के सामने खड़े हो गए। तो दशरथ के भी बाल अभी क्या सब बिखर गए थे, उनका शरीर जो है पूरी प्रकार से शिथिल हो गया था, उत्साह नहीं था, दुख से भरे हुए थे। तो रामचंद्र पूछते हैं कि तात पिताश्री क्या हो गया, कुछ गड़बड़ है इस उत्सव में, कुछ समस्याएं आ रही है। तो दशरथ ने बताया हाँ कि अभी अभी मैं क्रोधागर से आया, कैकेयी से बात करके, तो उसकी इच्छा है कि भरत को राजसिंहासन पर बिठाए। रामचंद्र को आनंद हो गया, ये सबसे अच्छी बात है, मैं उसका सेवक बन के उसकी सेवा करूंगा, इससे बड़ा आनंद मुझे प्राप्त नहीं होगा। मुझसे जितना आनंद राजा होने का मिल रहा है उससे भी मेरे को आनंद है मैं भरत की सेवा करूं। ये कौन कह रहे हैं, प्रभु रामचंद्र कह रहे हैं। देखिए इसमें विशेषता है, जो प्रभु कहते हैं कि मुझे शरण आ जाओ, उनको आनंद किसमें आता है, अपनी भक्तों की सेवा करने में आता है। इसलिए वृंदावन में वो भगवान की तरह नहीं रहते, क्योंकि उनको उसमें आनंद है अपने भक्तों की सेवा करने में। तो रामचंद्र जी को आनंद होता है कि ठीक है, भरत राजसिंहासन पे बैठे, मैं सब कुछ करूंगा, कि ये ठीक है, लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण मैंने वचन दिया है, आपको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा। बोला कहते कि पिताश्री अगर आपके ही इच्छा है, आपको इसमें आनंद आता है, कई कई इसमें आनंद आता है, तो मैं आनंदी हूं, मेरी चिंता मत करो, मैं चला जाऊंगा 14 वर्ष के लिए, मैं आराम से चला जाऊंगा, आप चिंता मत करो। तो दशरथ का हृदय टूट गया, रोने लगे, और तुरंत ये वार्ता पूरे अयोध्या में फैल गई। सीता को कहने के लिए प्रभु रामचंद्र आए, सीता को बताया कि मुझे पिताश्री की इच्छा है कि मैं वनवास चला जाऊं 14 वर्ष के लिए और भरत राजा बने। तो सीता ने कहा कि नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं आऊँगी आपके साथ। रामचंद्र ने कहा कि नहीं, ये बहुत कठिन होता है, इतना आसान नहीं है। लक्ष्मण ने भी कहा कि मैं भी आपके साथ आ जाऊंगा। तो जाने का समय हो गया, तो सब दूसरे दिन घर से निकले। तो पूरे अयोध्यावासी को दुख हो गया। तो हमें भगवान को छोड़ने के लिए दुख होना चाहिए, जैसे अयोध्यावासियों को हुआ, भगवान राम जा रहे हैं। तो हमें भगवान आते हैं तो दुख होता है, आनंद नहीं आता है। कथा में, कीर्तन में, प्रसाद में भी पहले पहले आता है, बाद में भी नमक कम हो गया, चिली कम हो गई, बाद में प्रसाद में भी जो भगवान का स्वरूप है उसमें भी दोष दिखाने लगते हैं। तो पहले पहले सब कुछ आनंद आता है, तो इसमें क्या है, भगवान को स्वीकार करने में हमें तकलीफ होती है। तो भगवान जा रहे हैं, मतलब हमें जो करना चाहिए वो करने में आनंद आता है। तो अयोध्यावासी छोड़ नहीं पा रहे थे, उनके पीछे गए। हाँ, बाद में गुहा मिल गए, भारद्वाज मुनि के आश्रम में आते हैं और भारद्वाज मुनि को अपनी योगिक शक्ति के द्वारा पता था कि ये सब कुछ हो गया है, अभी राम यहाँ आ रहे हैं। तो आने के बाद उनका स्वागत किया, कथा है ठीक है आपको वनवास में भेजा है तो मैं वनवास में ही हूँ, मैं वन में ही हूँ, आप मेरे साथ रहिए, मेरे शिष्य जो है आपकी सेवा करेंगे और यहाँ आप आनंद से 14 वर्ष रहिए, हम सब लोग आपकी सेवा करेंगे। तो कहते कि नहीं, यहाँ रहूँगा तो अयोध्या यहाँ से बहुत नज़दीक है, तो आप मुझे ऐसा स्थान बताइए कि जहाँ पर मैं पूरे प्रकार से सबसे दूर रहूँ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से 60 माइल दूर जो है चित्रकूट आप जाइए, और चित्रकूट जो यहाँ पर आपको शांति मिलेगी और वहाँ कोई आपको तकलीफ नहीं देगा, आप उधर चले जाओ। तो प्रभु रामचंद्र और सीता और लक्ष्मण वहाँ आते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है चित्रकूट, पहाड़ के ऊपर वहाँ रहते हैं। तो दशरथ का क्या होता है, वो उस सेपरेशन को, उस विरह को सहन नहीं कर पाते हैं, वो देह त्याग करते हैं। तो तुरंत सब ब्राह्मण वशिष्ठ मुनि के अध्यक्षता में आते हैं कि अभी दशरथ का तो देहांत तो हो गया, देह त्याग किया है, तो तुरंत दूसरा तो कोई राजा चाहिए, नहीं तो पूरा राज्य कारोबार जो है ये पूरा क्या हो जाएगा, व्यस्त हो जाएगा। तो भरत उस समय कहके गए थे, मतलब अपने माता के पिता के पास, क्या बोलते, दादाजी नाना जी के पास गए थे। तो तुरंत वशिष्ठ मुनि ने एक दूत को भेजा कि भरत को जाके बताओ, ज्यादा कुछ बताना नहीं, कि बस आपकी जरूरत है अयोध्या में, वापस आ जाओ। तो दूत गए, तो भरत को भी उस समय अलग अलग प्रकार के स्वप्न जो है, वो पर्वत से गिर रहा है, अंधकार हो गया है, ऐसे अलग अलग प्रकार के अशुभ स्वप्न उनको आ रहे थे। तो उनके साथ शत्रुघ्न भी थे, तो उनको बोल रहे थे कि ये सब मुझे दिखाई देता है, ऐसे कुछ विचित्र, कभी कभी जो है खून पड़ रहा है आकाश से, ऐसे विचित्र स्वप्न मुझे दिख रहे हैं, तो ये क्या है। उसमें ही तुरंत ये संदेश लेकर अयोध्या से आते हैं। तो वहां पर वो संदेशवाहक बताता है कि आपको अयोध्या में तुरंत बुलाया है। तो भरत कहते हैं कि सब कुछ ठीक है ना, हाँ सब कुछ ठीक है, क्योंकि उसको बताया गया जितना ज्यादा मत बोलो, जितना मैंने हमने बोला है उतना ही बोलना, तो उतना ही बोलो। तो उन्होंने खाली बताया हाँ सब ठीक है आप चले जाओ। तो तुरंत तो ये आ जाते हैं। आने के बाद भरत जी पहले दशरथ के दरबार में जाते हैं, महल में जाते हैं, वहां दिखाई नहीं पड़ते। पहले अयोध्या में आते हैं तो देखते हैं कि ये निस्तेज हो गया है, यहाँ के पेड़ भी, पत्ते भी, फूल भी, प्राणी, पानी, सब कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ कोई निस्तेज है, कुछ जीवन ही नहीं, कुछ प्राण ही नहीं है। तो उनको इससे कुछ अशुभ लगता ही है कि अयोध्या जाते समय में था ऐसे नहीं है, कुछ तो अलग दिख रही है। तो जहां राम नहीं है वहां हमें कैसा दिखना चाहिए, निस्तेज दिखना चाहिए, वहां कोई प्राण नहीं है, वहां हमें कोई स्वारस्य नहीं रहना चाहिए। तो तो भरत को ये दिखाई दे रहा है, तो आ गए दशरथ के महल में, तो दशरथ महाराज नहीं थे, तो अपने माँ के महल में आ गए और माँ को दंडवत किया, गले लगाया। तो अयोध्या में कोई भी आनंद नहीं था, केवल एक कैकेयी आनंद थी। तो कैकेयी को पूछा कि मेरे पिताश्री कहाँ है, तो कैकेयी ने कहा कि उनका देहांत हो गया। तो भरत तुरंत जमीन पे गिर गए, तो उठे कि अभी शोक कैसा करना अच्छा नहीं है राजपुत्र को, आपको अभी दशरथ महाराज की जो सिंहासन है उसको संभालना होगा। तो कहते हैं कि मेरे बड़े भाई राम कहाँ है, उनका ही अधिकार है, वो कहाँ है। तो कहते कि उनको 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा गया है। तो कहते ये कैसे हो गया कि उनके हाथ से कोई ब्रह्म हत्या हो गई या कुछ खराब हो गया, इसके लिए उनको ये शिक्षा दी गई है। बोलता कहीं बोलने लगे कि मैं आपके कल्याण के लिए, आपको राजा बनाने के लिए मैंने ही दशरथ से ये मांग की थी। तो तुरंत भरत गुस्सा हो जाते हैं, कहते ये दुष्ट तो मेरी माता नहीं है, तो वैरी है। तो कहते ऐसा आपने कैसे सोचा कि राम को छोड़कर उसकी जगह पे मैं बैठ जाऊंगा, ये कैसे आपने सोचा, और आपको दुख नहीं होता है राम को वनवास में भेज देना, जो राजमहल में रहने वाले हैं सीता राम लक्ष्मण उनको वनवास में भेजा है आपने, तो ऐसे कष्ट उनको देना आपको दुख नहीं होता है, आपको इसमें आनंद आता है। तो उससे गुस्सा करते हैं। तो वशिष्ठ कहते हैं कि अभी थोड़ा एक घरेलू मामला थोड़ा दूर रखो, अभी राज्य पहले देखो तो आप राजा बन जाओ। तो भरत कहते ये नामुमकिन है, मैं नहीं होऊंगा, राम ही अयोध्या के राजा रहेंगे, मैं उनका सेवक रहूंगा। ये ठीक है, तब तक दशरथ महाराज का जो शरीर तब तक रखा था तो उसकी प्रक्रिया हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। बाद में भरत तैयारी करते हैं कि राम कहाँ गए हैं, ढूंढने की तैयारी करते हैं। तो सुमंत जब तक आए थे तो बताया कि गुहा के साथ हम यहाँ गए थे, भारद्वाज मुनि के आश्रम पे गए थे, वहां से राम चित्रकूट चले गए। तो भरत जी अपने साथ जितना भी अयोध्या का सैन्य है सब कुछ लेते हैं, क्योंकि ये सब जो है राम के चरणों में अर्पण करने के लिए कि फिर आपसे वापस आ जाओ। अकेले गए तो ऐसा कन्विंस नहीं होगा राम को कि केवल आप अकेले ही आए हो, अयोध्यावासी नहीं आए हैं। तो सब जो है सब सैन्य को लेके गए और भारद्वाज मुनि के आश्रम पे सब सैन्य को देखकर भारद्वाज मुनि कहे कि हाँ अभी राम तो चले गए तो उसको छोड़ दो, क्या उनको मारने के लिए जा रहे हो। तो इसको सुनकर भरत का हृदय जो है बहुत टूटा, कि आप इतने कैसे मैं गिर जाऊंगा, जो कि मेरे बंधु राम की हत्या करके उनका सिंहासन मैं ले लूं, ये मैं कभी इच्छा भी नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूं उनको वापस लाने के लिए। तो भारद्वाज मुनि कहते हैं कि वो गए हैं कहाँ, वो चित्रकूट पे गए हैं, तो चित्रकूट पे आपके मिलेंगे। तो चित्रकूट पे सब आते हैं, तो वहां से जब आते हैं तो पहले जमाने में अगर कोई बस्ती है तो कैसा पता चलता था, वहां से स्मोक, क्या कहते धुर हिंदी में क्या कहते, धुआं आता था। तो अगर धुआं आ रहा है कहां से तो मतलब क्या है, यहाँ बस्ती है। आजकल बस्ती है का मतलब क्या है, टीवी के एंटीने दिख रहे हैं तो यहाँ बस्ती है, यहाँ पे बस्ती है। तो धुआं आ रहा है तो ये तो जंगल में है, पूरे जंगल में देख रहे हैं जगह से धुआं आ रहे हैं। तो भरत ने समझ लिया कि ये ही जगह है जहां पर रामचंद्र हो सकते हैं। तो उन्होंने सैन्य को कहा कि अगर लेके आपको लेके जाऊंगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और जब भी वो वन में आ गए तो पहले से ही वहां से हिंस पशु पक्षी जो थे वो सब इधर उधर भाग रहे थे, तो सब कुछ गड़बड़ हो रहा था। तो भरत ने कहा कि मैं अकेले आके जाके आगे देखता हूं। तो वहां से ऊपर से राम ने जो अपनी सीता को पूरे निसर्ग सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे, और वो बहुत ही गृहस्थ लोगों के बहुत अच्छा संवाद है। कहते हैं कि मनुष्य को जिस परिस्थिति में भगवान ने रखा है उसमें रहना चाहिए। देखिए अगर हम अगर को महल में से निकाला नहीं जा सक जाया देता तो ये सौंदर्य हम कहाँ देखते हैं? मतलब जहां है आप सुखी रहो, ऐसा नहीं कि महल में है तो महल ही चाहिए, ऐसा नहीं। सीता को कहते हैं कि जहां भी हम जैसे भी हमें रखा गया है वैसे रहना चाहिए। तो कहते हैं कि ऐसे देखिए कई कई कि हमारे ऊपर कृपा है, उनके वजह से हम जंगल में आए गए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, राज्य कारोबार नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, एकदम शांति है, ऐसे सुमधुर पक्षी है, फल है, सब कुछ है, कितना आनंद है। तो राम कई कई को दोष नहीं दे रहे, बोले कि उनके वजह से मेरे को अच्छे दिन मिल गए, अच्छे दिन आ गए। ऐसे अच्छे दिन सबको नहीं आते। तो ये राम कन्विंस कर रहे हैं सीता को, देखिए ऐसा ये है, वह है, मंदाकिनी नदी है, ये चित्रकूट है, देखिए ये फल है, पेड़ पत्तों को समझा रहे कि ये फल है, ये फूल का नाम ये है वो है। उस समय वो देखते हैं राम बहुत ऐसे दूर तक कि धूल उड़ रही है, जैसे धूल के कण जो है वो आकाश में उड़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो लोग कुछ तो चल रहा है, समथिंग इज मूविंग। तो लक्ष्मण को बताते हैं कि आप पेड़ के ऊपर चढ़ो और देखो ये क्या है। तो लक्ष्मण तुरंत ऊपर जाते हैं, पेड़ के ऊपर है, देखते हैं कि बहुत बड़ा सैन्य है। तो लक्ष्मण तुरंत राम के पास आते हैं, ये जरूर ही भरत है, ये मैं देखता हूं कि सैन्य को लेकर आ रहा है, इसका जरूर ये हेतु है कि आपको खत्म करना, क्योंकि आप 14 बरस के पास आओगे तो बाद में उसको भी आपको भी राजा नहीं बना सकेगा, उसको अनंत राज का भोग न करना चाहिए, या ऐसा सोचकर आया है, इसलिए पहले मैं ही जाकर उसके खत्म करता हूं। राम कहते हैं थोड़ा चिल आउट, थोड़ा ठंडा हो जाओ, ऐसा गुस्सा करना अच्छा नहीं है। देखिए जो दूसरा व्यक्ति सोच नहीं रहा है वो राम लक्ष्मण सोच रहे हैं। ये मराठी में कहावत है, मन चिंतित है वैरी न चिंती, मतलब मन जो सोचता है हमारा शत्रु भी नहीं सोचता है, हमारे शत्रु के बारे में हमारे मन जो सोचता है वो शत्रु भी नहीं सोच रहा है, इतना मन हमारे दूसरे के बारे में हमारे मन में कलुषित कर देता है। तो कहते हैं कि अरे लक्ष्मण थोड़े शांत हो जाओ, आपको क्या लगता है कि वो मेरे मारने के लिए आया है? ऐसा भी हो सकता है तो हमें मिलने के लिए आया है। तो तुरंत लक्ष्मण जी है शांत हो जाते हैं, ठीक है। तो भरत आते हैं और राम को देखकर दुख होता है उसको, वो जमीन पे गिर जाते हैं, क्योंकि राम ने वनवास के वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनकी शरीर मतलब बाल जो है ये क्या हो गया है, जटा बन गई है उसकी। हाँ, ये भारद्वाज मुनि के आश्रम में जिसको ये स्टाइल हेयर स्टाइल चाहिए तो बताया है कैसे करना है। तो वहां पर राम जब रहते हैं तो राम कहते हैं कि आपको वनवास में जाने का दूसरा क्या है कि जटाधारी होना चाहिए आपको, तो इसके लिए क्या करना, यह हेयर स्टाइल किसको चाहिए तो मैं बता देता हूँ, रामायण का सीक्रेट, ये बनियन ट्री वर्ड वर्ड बोलते हैं मराठी में, हाँ उसका चिक है उसको लगा देने का, हाँ क्या बोलते हैं सैप को हिंदी में, हिंदी में सैप चिक, चिक मराठी में चिक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, व्हाइट देश रहता है ना गोंद, हाँ उससे गोंद, अलग ट्री से गोंद बनता है लेकिन इससे गोंद नहीं बनता है। तो ठीक है, जो व्हाइट चीज आती है ना उसको अपने बालों पे लगाना हेयर स्टाइल करने के लिए, तो ये जटाधारी है। तो वैसे राम का वैसे हो गया है पूरे वो वर्ड का चिक लगा के, तो उसको क्या किया है राम ने, जटा बना दी है। तो राम को देखकर लक्ष्मण को बहुत दुख होता है, देखिए क्या आपकी अवस्था हो गई है, मैं देख नहीं पाता हूं, अब चलिए वापस। तो कहते हैं कि आपको तो राजा बना दिया है दशरथ महाराज ने, और बाद में पूछते हैं कि दशरथ कैसे हैं। तो सब कुछ होता है, राम को बहुत दुख होता है दशरथ का देहांत हो गया सुनकर। तो भरत महाराज अंत में राम को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप वापस चलिए। तो राम कहते हैं कि असंभव है, मैंने पिता को वचन दिया है और इस वचन को मुझे निभाना ही पड़ेगा। तो भरत कहते हैं कि मैं भी आपके साथ यहाँ रह जाऊंगा, आग अगर मेरे साथ नहीं आओगे तो मैं इधर रह जाऊंगा। तो रामचंद्र कहते हैं कि आप अयोध्या के बारे में सोचो, आप मेरे बारे में मत सोचो, आपके बारे में मत सोचो, अयोध्या के वासियों के बारे में सोचो, तो उनके लिए आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं जा सकता हूं तो आपको जाना पड़ेगा। तो किसी भी प्रकार से उनको कन्विंस करते हैं, मना करते हैं कि आपको जाना पड़ेगा। तो तुरंत भरत महाराज अपने थैली में से पादुकाएं निकालते हैं और राम के चरणों पर रखते हैं और कहते हैं कि इसके ऊपर अपने पांव रखो, क्योंकि आपकी सेवा करने के लिए मैं इस पादुका में और आप में कुछ अंतर नहीं देखूंगा, और आपकी समक्ष आपकी उपस्थिति में मैं अयोध्या का राज्य संभालूंगा। और अपने सर पर उसको लेकर वो आए अयोध्या में, वापस अयोध्या के बाहर आ गए नंदीग्राम में, बहुत अच्छी जगह है नंदीग्राम। तो नंदीग्राम में आने के बाद उन्होंने पादुका का वहां पर स्थापित किया, राज्याभिषेक किया और वहां से वो पूरे अयोध्या का देखभाल करने लगे। और जब भी वहां जाए तो उसको चावल डालते हुए दिखा देते थे, तो उनके प्रसाद अर्पण करते हुए, भोग अर्पण करते हुए, ऐसे उस चरण वो पादुका की सेवा में लगे हुए भरत थे 24 घंटा। और खुद जो है वो चावल जैसे एक धान्य को गोमूत्र में डालकर उसको खाते थे हर रोज, गोचर वृत्ति। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने भी इसको पालन किया। मतलब क्या है, हाथ को पीछे रखना और जमीन के ऊपर अपने जीवा से जितना भी गाय, जैसे गाय खाती है वैसे खाना, तो ये गोचर वृत्ति है। उसको धारण किया 14 वर्ष तक। तो राजा है, कुछ भी खा सकते थे, लेकिन नहीं। तो ये राम का त्याग है और भरत का सब कुछ होकर भी त्याग है, जिसको रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, युक्त वैराग्य। खुद के लिए कुछ भी नहीं, खुद के लिए कुछ भी नहीं, सब कुछ भगवान की सेवा में। वो कहा सकते थे, अरे मैं महाराज का, राम का सेवक हूं, राजा हूं, पंच पकवान ने वो पादुकाओं को राम को चढ़ाते थे, लेकिन खुद उसको कभी स्वीकार नहीं करते थे, वो खाली गोचर वृत्ति से रहते थे। तो इस भाव में ये भक्त का भाव है कि इस दुनिया में किस प्रकार से रहना है, कि सब कुछ भगवान के संबंध में देखकर, भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान को अर्पण करने के लिए। आजकल हम भगवान को अर्पण करते हैं लेकिन खुद को जो चाहिए वो खाली थोड़ा पास कर लेते हैं भगवान से, ये मेरे को पिज्जा चाहिए तो भगवान को पिज्जा अर्पण करते हैं, मेरे को ये खाना चाहिए तो भगवान को ये अर्पण करते हैं। तो भगवान को अर्पण करते हैं, हमको सिखाया गया है, नहीं तो पाप लगेगा, राक्षस आएगा, ये सब कुछ सिखाया गया है। लेकिन उसमें भी भाव क्या है, मुझे जो लगता है वो भगवान को अर्पण करेंगे। तो अन्न से ऐसा होगा तो बाकी कैसे होगा, बाकी सब अन्न से प्रभाव में है जीवन में, जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो हम कैसे अन्न खाते हैं इसके प्रभाव से होता है जो भी हम कर रहे हैं। इसलिए अन्न को बहुत महत्व दिया गया है, खाली ऐसा खाना नहीं है। तो इस भाव में भगवान को अर्पण कहिए तो उसको प्रसाद रूप में कहे तो हमारी भावना कैसी हो जाएगी, कृष्ण भावना हो जाएगी। तो इसलिए भरत जी गोचर वृत्ति से वहां रहे 14 वर्ष तक राम की सेवा की। बाद में यहां युद्ध हो जाता है और सब वापस आते हैं। तो जब आ रहे हैं तो उनको लगता है कि अभी अयोध्या आ रही है, उससे पहले भारद्वाज मुनि का आश्रम है, बाद में गुहा जो उन्हें भेजा था वो है। बाद में राम को याद आते हैं कि अरे भरत भी मेरी राह देख रहा होगा, तो खुद नहीं आते हैं, वो हनुमान जी को भेजते हैं और हनुमान जी को कहते हैं कि जो भी कुछ अयोध्या में हुआ सब कुछ भरत को बताओ, और उस पे चेहरे पे क्या भाव होते हैं ये देखो और मुझे बताओ। देखिए ये कथा सुनते समय भाव होने चाहिए, नहीं तो हम कब खत्म होगा तो इस भाव से बैठे रहते हैं, वो चलो खत्म ना, वो मुझे अभी कब खत्म होगा। तो कथा सुनते में हनुमान जी को कहते हैं कि भरत के भाव मुझे बताओ कि क्या क्या भाव उसके मतलब मुख पे प्रकट हो गए, शरीर पे प्रकट हो गए, तो ये मुझे बताओ। तो हनुमान जी जाते हैं, कहते हैं कि मैं प्रभु रामचंद्र का सेवक हूँ, मेरा नाम हनुमान है। तो पूरा बता देते हैं कि इस प्रकार से सब सीता का उन्होंने लंका से लाया, रावण का वध हो गया। तो भरत को इतना आनंद होता है कि ये वार्ता लाने के लिए हनुमान जी को कह रहे हैं, मैं आपको 100,000 गाय, 100 हाथी और 13 कुमारियां शादी करने के लिए दूंगा। देखिए भगवान की सेवा करने के लिए क्या क्या मिलता है। लेकिन हनुमान ने क्या कहा, कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। देखिए आपका भावना का मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन ये तो प्रभु रामचंद्र की सेवा में आप लगा रहे हैं तो उसको लगाओ। तो वहां पर प्रभु रामचंद्र जब आते हैं तो राम से गले लगते हैं, तो इस भरत के भाव को, हालांकि उसको राज्यपद मिला है तो फिर भी उसका उपभोग न करते हुए उसको भगवान की तरह सब कुछ, जब राम आते हैं तो भरत कहते हैं कि आपकी कृपा से जब आप गए थे उससे 10 गुना ज्यादा अयोध्या क्या हो गई है, विस्तारित हो गई है, उसको सब ऑपुलेंस, जो उसका ऐश्वर्य बढ़ गया है, फूल फल खेती सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये देखिए ये भाव क्या है, राम को कह रहे ये आपकी कृपा से हो गया। किया किसने है, भरत ने किया 14 वर्ष तक, तो कह सकता था आपकी कृपा से मैंने किया है, ये भी हो सकता है, दोनों भी हो गया ना, भगवान की कृपा भी संतुष्ट हो गए भगवान और मेरा भी कर्तृत्व आ गया, आपकी कृपा से मैंने किया। तो वो वहां मैं नहीं आता है भरत के भाव में, आपकी कृपा से ये पूरा ऐश्वर्य जो है ये बढ़ गया है, अभी आप इसको स्वीकार करो। तो भगवान हमें जो सेवा देते हैं तो भगवान को समर्पित करते समय 10 गुना उसका ऐश्वर्य बढ़ना चाहिए, भरत के भाव से सेवा करके। अरे भगवान हमें देते हैं तो उसमें से 10% हम देते हैं भगवान को, 90% हमको रखते हैं, तो उससे 10 गुना ज्यादा बना के कैसे दे दूं, इसको हम विचार नहीं करते हैं। तो ये भरत का भाव भी महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से हम इस भौतिक जगत में रह के भी भोग में भी त्याग को स्वीकार कर सकते हैं, और इसमें भी आनंद है, जो भोग में नहीं मिलेगा वो त्याग में आनंद है, भगवान की सेवा में जो आनंद है वो किए बिना नहीं मिलेगा। सुन के अच्छा इतना आनंद लगता है तो करने के बाद कितना हो जाएगा। तो इसके लिए केवल एक ही है मंत्रा, फिर से वापस आ जाएंगे इस श्लोक के अनुसार, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, यही मंत्रा मन जो है यह हमें ऐसी सेवा करने से दूर रख रहा है। तो इस मंत्रा से हमें हर क्षण बच के रहना चाहिए, हर क्षण, और हमें पता चलना चाहिए कि क्या सेवा है और क्या भोग है। तो इसलिए राम के चरण हमारे हृदय में नित्य होने चाहिए। तो हमारा मन अगर मंत्रा की संगत में होगा तो हम पूरे प्रकार से सत्यानाश हो जाएगा। तो सवई मन कृष्ण पदारविंदयो, मन कहा चरणों पे, उसका परिणाम कैसे दिखाया दूसरे लाइन में बताते हैं, कैसे वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णनम, ये लक्षण किसका है, जिसका मन भगवान के चरणों पे है, उसका परिणाम क्या है, तीसरे लाइन क्या है, मंदिर मार्जना दो, मतलब सेवा। या ऐसे ही नहीं, ये स्टेप्स है, पहले मन, बाद में इनके संग में है, और मतलब भगवान का नाम जप करके, और उसका परिणाम क्या हो रहा है, सेवा में हो रहा है। तो केवल जप करना ये आध्यात्मिक जीवन नहीं है, और केवल सेवा करना ये आध्यात्मिक जीवन नहीं है, दोनों भी है। कोई लोग बहुत सेवा करते हैं जप करने के लिए टाइम नहीं है, कोई लोग बहुत जप करते हैं सेवा करने के लिए टाइम नहीं है। तो हम जैसे कनिष्ठ मध्यम हो, जो भी स्तर हमारा है, कभी भी सोचना नहीं चाहिए कि केवल जप को ही महत्व देना चाहिए, सेवा को नहीं। ऐसा नहीं कि सेवा को ही महत्व देना चाहिए और जप को नहीं, दोनों भी होना चाहिए। तो जपा का समय तो सुबह है, जिस समय हम मंत्रा को कह सकते हैं कि आप दूर जाओ, और दिन भर अगर हमने अच्छा से जप किया है, एक ध्यानपूर्वक जप किया है। अभी मैं अमेरिका में था, एक बिजनेसमैन के घर पे एक प्रोग्राम था, तो उस समय सुबह मैं इस व्यक्ति को मिलने के लिए गया तो दरवाजा बंद करके फोन पे बात कर रहा था, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट फोन था, तो सबके सामने भी कर सकते ना, देर आर मेनी डिस्ट्रैक्शंस बाहर आ गए। तो मैंने सोचा कि जपा के बारे में हम कभी ऐसा सोचते हैं, सब दरवाजा बंद, आंख के मन के सबके दरवाजे बंद, मेरा मीटिंग किसके साथ चल रहा है, भगवान के साथ, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, नहीं दरवाजा खुला रहता है, सब आ जाओ। तो उसको पूछा मैं, कभी जपा के समय आपने, वो डिवोटी है, इनिशिएटेड है, तो जपा के बारे में कभी ऐसा सोचते हो जपा करते समय सब कुछ बंद, तब हमारा बिजनेस क्या होगा, बढ़ेगा। कौन सा बिजनेस है? कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अवर मेन बिजनेस। तो बढ़ेगा। इस छोटे से बिजनेस में थोड़े से डॉलर मिलने के लिए एकांत चाहिए आपको, किसी के साथ बोलने के लिए, तो भगवान के साथ नहीं चाहिए। हाँ, भगवान के साथ परम पूज्य लोकनाथ महाराज ये बहुत बार बताते हैं, जब वो जू में ब्रह्मचारी थे तब वो मिलना चाहिए था उनको प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट ने बोला कि मैं बिजी हूं। लोकनाथ महाराज तो दिख रहे, तो ये जपा कर रहे हैं, मीटिंग में हूं ऐसा कुछ। तो बाद में पूछे कि क्या कर रहे थे मीटिंग में, हाँ बताया, आई वॉज मीटिंग विद कृष्णा, है ना, कृष्ण के साथ मीटिंग चल रही थी। जपा करना तो इसको ध्यानपूर्वक कहा गया है, ऐसे अगर करेंगे तो मंत्रा दूर जाएंगे, नहीं तो हमारी माला भी हाथ में रहेगी और मंत्रा मन में रहेगी, तो उसका कोई परिणाम नहीं होगा। तो इस मंत्रा से हमें सीखे कि अगर, और भरत से किस प्रकार से हमें राम की सेवा करें और इस मंत्रा को दूर रखें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।